ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का यह संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। डीजीएओ ने कहा कि इस मजबूत वायु रक्षा प्रणाली में कई तरह की बहुस्तरीय एडी सेंसर और हथियार प्रणाली शामिल हैं।
We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. Dosto, hamari ladai atankwad aur atankwadiyon ke khilaf thi. Isliye 7 mai ko humne keval atankwadi thikano par hi hamla kiya tha.
एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट और हाई किल काउंटर यूएस सिस्टम और वायु रक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने आकाश प्रणाली जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा अत्याधुनिक उपकरण हथियार प्रणाली प्राप्त करने में बजटीय और नीतिगत समर्थन के कारण शक्तिशाली वायु प्रणाली को संचालित करना संभव हो पाया है।
हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ हैव इंडियन फोर्सेज मैनेज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज टू बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रा इन द कंट्री इन स्पाइट ऑफ द अनरिलेंटिंग एफर्ट्स बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज। मोस्ट ऑफ यू एंड द मेजोरिटी पॉपुलेस within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force.
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को नाकाम किया। इससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान की वायुसेना ने 9 और 10 मई की रात को भारतीय एयरफील्ड और लॉजिस्टिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उन्हें मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं था।
अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया।
डीजीएमओ ने ऑपरेशन में सहयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार, विभाग और एजेंसियों द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों का पूरा समर्थन है।
उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं।
नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है, जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कई सेंसर और इनपुट का उपयोग करते हुए नौसेना खतरों को बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है।
कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को केरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations.
वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को मकरान तट के पास नियंत्रित रहने के लिए मजबूर किया, जिससे समुद्री क्षेत्र का खतरा टल गया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच आज शाम बातचीत होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार काम कर रहे हैं। कल मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने 7000 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र की निगरानी करनी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, क्योंकि वो विस्फोटक हो सकती है। एनडीएम ने कहा है कि अगर लोगों को कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमानन परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने के 15 तारीख तक नागर विमानन परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। केंद्र सरकार ने अपनी ताजा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुछ भारतीय समाचार चैनलों द्वारा भारतीय हवाई ठिकानों को नष्ट होने की बात स्वीकार करने का झूठा आरोप लगाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान साक्ष्य के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। इस कठिन समय में हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। अगर आपको संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना दिखाई दे तो आप पीआईबी फैक्ट चेक इकाई को सूचित करें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर साझा कर सकते हैं। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देलती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया है। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के महत्व पर बल दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट करियर से संन्यास की खबर सोशल मीडिया पर साझा की। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 2975 अंक बढ़कर 82430 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी भी 917 अंक बढ़कर 24,925 पर बंद हुआ। एक दिवसीय कारोबार में वर्ष 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी की यह सबसे ऊंची उछाल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।